मगर हम तो सभी के साथ ही खाना खाएंगे, मुझे अकेले मेहर के साथ नहीं रहना, आप सभी के साथ रहना है, निशा ने कहा। मैं जहां छुट्टियों का हर पल एंजॉय करना चाहती हूं, बहुत देर बाद मेरी जिंदगी में ऐसे पल आए हैं जहां मैं बहुत खुश हूं। बस मॉम के बारे में सोचकर परेशान हो जाती हूं कि उन्होंने अपनी बेटी और बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। निशा को ऐसे उदास देखकर आदित्य उसके पास गया था। निशा, कोई बात नहीं, टाइम आने दो, हम लोग पूछेंगे उनसे क्यों उन्होंने हम दोनों के साथ ऐसा किया। इस वक्त अपना मूड खराब मत करो, जो तुम चाहती थी तुम्हारी जिंदगी में वो हो रहा है ना, तुम अब मेहर के साथ हो। सही बात है भाई, मैं अपना मूड खराब नहीं करूंगी। सभी खाना खाकर अपने कमरों में चले गए थे। माना ने दोनों बच्चों को उनके कमरे में सुला दिया था। मारिया का दीवान बच्चों के कमरे में ही लगा हुआ था। मारिया बच्चों के पास उनके कमरे में रात को रुक गई थी। बच्चों का ख्याल रखना मारिया, अगर जरूरत पड़े हम साथी के कमरे में हैं, हमें बुला लेना। मनाल और आदित्य अपने कमरे में चले गए थे। दोनों शैतान तो सो गए, अब इस बड़े शैतान को भी सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है, माना ने हंसकर कहा। बिल्कुल सो जाना चाहिए, उससे पहले नींद की गोली चाहिए बड़े शैतान को, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे पास तो कोई गोली नहीं है, सोने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मनाल ने कहा। है ना नींद की दवाई तुम्हारे पास, और इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कहते हुए आदित्य ने माना को जोर से खींचकर अपने साथ लगा लिया था। अच्छा, तो ये दवाई चाहिए आपको नींद की, मगर आदत तो हर चीज की ही बुरी होती है, माना हंसने लगी थी। दोनों बहुत देर तक अपनी छोटी छोटी बातें करते रहे। उधर मेहर और निशा दोनों छत पर बैठे हुए थे। कमरे से बाहर अच्छा लग रहा है ना निशा, कितना फ्रेश फील हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, निशा ने कहा, जो मेहर की गोद में बैठी हुई थी। पता है निशा, बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है मेरे दिल और दिमाग पर कोई बोझ नहीं है, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। क्यों, किस बात का आपके दिल और आपके दिमाग पर? मुझे लगता था हम दोनों की वजह से, हम दोनों के रिश्ते की वजह से मनाल और आदित्य जीजू की जिंदगी बर्बाद हो गई, वो दोनों अलग अलग हो गए, फिर अदा और आदित्य दोनों को अपने पापा से दूर होना पड़ा, मेरी बहन को किन हालात से गुजरना पड़ा, मुझे हमेशा लगता था ये सब मेरी वजह से है। अगर हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आते तो शायद ऐसा नहीं होता। आप ऐसा मत सोचिए, इसके जिम्मेदार आप नहीं, मैं थी। आपने तो मुझे कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हम दोनों के रिश्ते की वजह से आपकी बहन का घर टूटा, मगर मैं ही नहीं मानी, अपनी बात मुझे भी अब पछतावा हो रहा है। जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए मॉम ने हम सभी के, मुझे बहुत गुस्सा है मॉम पर, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? आप इतनी बुरी कैसे हो सकती हैं? आप हमारे साथ इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकती हैं? एक माँ अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो आदित्य भाई को मरवाने को तैयार हो गई थी, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वरना मैं तो बच्चों का सिर दुखता नहीं सह सकती। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। अचानक से मेहर को ख्याल आया कि निशा उसे तुम की जगह आप कहकर संबोधित कर रही है। वो काफी हैरान हो गया। तुमने मुझे आप कहा, इतनी इज्जत दे रही हो, कमाल की बात है। बिल्कुल देनी चाहिए, मैंने देखा है मॉम भी डैड को आप कहती हैं, मनाल भाभी भी आदित्य भाई को आप कहती हैं, मुझे भी आपको आप कहना चाहिए, निशा ने कहा। उसकी बात सुनकर मेहर ने निशा को अपनी बाहों में जोर से गले लगा लिया। मुझे नहीं पता था मेरी निशा इतनी बड़ी हो रही है, दोनों हंसने लगे थे। अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो ये बताओ कि आगे क्या इरादा है? किस चीज की बात कर रहे हो? निशा ने मेहर के सीने से लगते हुए कहा। मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर निशा मुस्कुरा पड़ी। बच्चे तो मुझे भी चाहिए। तो फिर ठीक है, चलो। कहाँ? बच्चों के लिए काम करने, कहते हुए मेहर ने निशा को बाहों में उठा लिया। वो दोनों कमरे में चले गए थे। अगला पूरा दिन उन्होंने घूमते हुए बिताया। महेश जी और दीपा जी को भी वो लोग साथ ले गए थे। दोपहर को उन्होंने बीच के किनारे बने रेस्टोरेंट में लंच किया। रात को भी सब लोग बाहर खाना खाकर ही वापस आए थे। दोनों बच्चे सो चुके थे तो मारिया ने उन्हें उनके कमरे में सुला दिया था। माना भी थकी हुई थी, वो भी जल्दी ही सो गई। जब आदित्य बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि माना सो चुकी है, तो उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। वो नीचे आया, उसने देखा मॉम डैड के रूम की लाइट चल रही है। उसने दरवाजा खटखटाया। दीपा जी ने दरवाजा खोला। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आदित्य ने कहा। आओ बेटे, दीपा जी ने कहा, तुम्हारे डैड को तो नींद लेट आती है, अभी जाग रहे हैं। वो जाकर उनके पास कमरे में बैठ गया था। डैड, मैं देख रहा था कि आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, आप कल भी कह रहे थे, मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी, क्या बात है, आखिर ऐसा क्या है? आप दोनों बातें करो, मैं आप लोगों के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। दीपा जी कमरे से बाहर चली गई थी। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद महेश जी बोले, आदित्य, क्या आपको अपनी मॉम का कोई होश है? क्या आपने उन्हें देखा? याद है उनके बारे में कोई बात? मैं आपको जन्म देने वाली असली मॉम की बात कर रहा हूँ। नहीं, जब मैं पैदा हुआ तो उन्हें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो मेरे जन्म के कुछ महीनों बाद उनकी डेथ हो गई। मगर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? आपकी मॉम और अनीता जी दोनों सहेलियां थी, ये बात सच है ना?
हाँ डैड, आप अक्सर कहते हैं कि अनीता मॉम अक्सर अपनी सहेली से मिलने के लिए उनके घर आया करती थी। वो मुझे बहुत चाहती थी, इसीलिए उन्होंने डैड से शादी की। मुझे इस बात का शक है कि उनकी मौत नहीं हुई, उन्हें मारा गया है। मैं चाहता हूँ तुम इस बात को डिटेल में पता करो। मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको लगता है कि जैसे उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की, वैसे ही मेरी मॉम के साथ भी उन्होंने वही किया? मैंने इतने सालों में कभी भी अनीता मॉम को मुझ में और अधिराज में फर्क करते नहीं देखा। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत चाहा है और ना ही कभी ज्यादती के मामले में कभी दखल दिया है। फिर भी आप कह रहे हैं तो इस बात पर मैं गौर करूंगा। आदित्य वहां से उठकर अपने रूम में आ गया था, मगर उसके दिमाग में वही महेश जी की कही हुई बातें घूम रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी मॉम की मौत की जाँच कराएगा।